Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Mohan Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Vichar chal raha hai Kathopanishad mein. Dutiya adhyaya pratham valli. द्वितीय मंत्र का विचार संपन्न हुआ है। तो जो अपने से बाह्य अनात्म पदार्थ में सुख को ढूंढता है, सुख का साधन समझता है सांसारिक पदार्थ को, इसलिए जो बहिर्मुखी होता है, अविवेकी अज्ञानी को बालक कहा गया। उसको ना समझ समझना चाहिए, ना समझ इसलिए कहा जाएगा कि जिस अनात्म पदार्थ को सुख रूप समझता है, सुख का साधन समझता है, वही अनात्म पदार्थ अपने को दुखी करता है, दुख का साधन बन जाता है। दूसरी बात यह भी है कि संसार में हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, पराधीन होना कोई भी नहीं चाहता है। और पराधीनता में सुख जागृत तो क्या, सपना अवस्था में भी आशा नहीं करनी चाहिए। तो विचार करना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि जिसको अनात्म पदार्थ को हम सुख का साधन समझते हैं, जन्म से समझते आ रहे हैं, क्या उसी से हमारा बंधन दृढ़ होता जा रहा है कि बंधन से हम मुक्त होते जा रहे हैं। विचार करने पर यह निर्णय होता है, बंधन तो दृढ़ होता जा रहा है, ना बंधन से मुक्त हो रहे हैं, ना बंधन शिथिल हो रहा है। बालक जब जन्म लेता है तो उस समय केवल स्व शरीर में ममा बुद्धि करता है, और जितना बड़ा होते जाता है तो बंधन और बढ़ता जाता है। आत्मा अनात्मा की जो ग्रंथि है और दृढ़ होती जाती है। पहले अपने शरीर में मोह था, ममता थी, बड़ा हो गया तो फिर माता पिता में हो गया। तो जहां पर ममा बुद्धि होती है उससे अतिरिक्त में तव बुद्धि हो जाएगी, और मामा और तब यही तो ग्रंथि है। तो माता पिता में देखो एक बंधन बढ़ गया, आज धन कमाया तो धन के प्रति मामा बुद्धि हो गई, घर में पत्नी आ गई तो पत्नी मामा बुद्धि हो गई, फिर पुत्र में हो गया देखो, फिर जो है पुत्र आदि ममत्व हो गया, तो यह निर्णय होता है विवेकी के लिए, तो सांसारिक पदार्थ से पराधीनता होती है, स्वतंत्रता नहीं होती है, ग्रंथि दृढ़ होती है न कि ग्रंथि में शैथिल्य होता है। मान लो कि अभी भगवान विष्णु भी आ जावे विमान लेकर के, चलो भाई विष्णु लोग में बैकुंठ में, तो कोई तो तैयार नहीं होगा बैठने के लिए, हमारा काम अभी थोड़ा बाकी है, घर से आते हैं। तो सांसारिक कार्य कभी भी किसी का पूरा नहीं होता है, इसलिए यहां पर श्रुति कहती है, अन्यत्र भी कहती है कि हे अज्ञानी अविवेकी रूपी बालक, ना समच रूपी बालक, तुमको सचेत होना चाहिए कि काहे के लिए मनुष्य जन्म मिला है। केवल ना समझी में ही सारा जीवन नहीं जाना चाहिए, यह चेत अवैधित अथ सत्यम अस्ति। तो जीते जी ही जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया अथवा साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील होता हो, प्रयास करता हो, तो समझना चाहिए कि उनका जन्म सार्थक हो गया, इसी जन्म में मोक्ष नहीं हुआ। जिस क्लास तक उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया, अगले जन्म में आगे क्लास में प्रवेश करेगा। जैसे रमण महर्षि केवल एक ही क्लास का बाकी था, केवल निधिध्यासन ही बाकी था, श्रवण मनन कर लिया था। इसलिए यह नहीं समझना है कि देखो उसने वेदांत का श्रवण नहीं किया, गुरु के पास नहीं गया, है ना, कर्म उपासना नहीं किया और ज्ञान कैसे हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो कहना यह है कि श्रुति सचेत करती है बालक के लिए, अज्ञानी के लिए, कि परमात्मा का साक्षात्कार के लिए ही यह मनुष्य जन्म मिला है, अन्य कार्य के लिए नहीं है। और जिसने जीते जी ही पशुभाव को प्राप्त कर लिया, मरने के बाद तो पशु बनेगा ही, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब जिसने जीते जी ही देवत्व को प्राप्त कर लिया, मरने का बाद तो देवता बनेगा ही, इसलिए तो हम प्रयास किसमें करते हैं, किसका आश्रय लेते हैं, परमात्मा का आश्रय ले रहे हैं कि परमात्मा की सेना है, ये संसार जो है ना परमात्मा की सेना है, तो परमात्मा की सेना से आप युद्ध को नहीं जीत सकते, अविद्या काम कर्म को नहीं जीत सकते। परमात्मा का यदि आश्रय लेते हैं, परमात्मा का आश्रित होने पर जो बल प्राप्त होता है, उसी से ही अविद्या काम कर्म रूपी शत्रु पराजित होते हैं, अन्य से नहीं होते हैं। इसलिए यहां पर कहते हैं जो बहिर्मुखी न होकर के अंतर्मुखी हो गया, परमात्मा का बल को प्राप्त करता है, वो हो गया धीर, वही धीर बन सकता है और वही परंपरा से गुरु के शरण में जाकर के ज्ञान को प्राप्त करके साक्षात अमृतत्व, शाश्वत अमृतत्व को प्राप्त करता है। यह न प्रार्थयन्ते, जिसको परोक्ष ज्ञान भी हो गया हो कि सांसारिक पदार्थ से हम शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसी से हमारा बंधन दृढ़ होता जाता है, बंधन की शिथिलता नहीं होती है, ऐसा परोक्ष ज्ञान होने से भी संसार के प्रति वो आसक्त नहीं होता है, किसी प्रकार की ऐषणा नहीं होती है। इसलिए हमारे भगवान भाष्यकार ने लिखा है, चाहे पुत्रेषणा हो, चाहे लोकेषणा हो, चाहे वित्तेषणा हो, ये त्रिविध जो ऐषणा है ना, ये श्रवण मनन निध्यासन, ये देखो श्रेष्ठ साधन है संसार में, यही श्रवण मनन निधिध्यासन, इसको कहते अंतरंग साधन, बाकी जितने भी है बहिरंग साधन। तो अंतरंग साधन का अधिकारी ऐषणा से लिप्त हुआ हो, ऐषणा में पड़ा हुआ व्यक्ति अधिकारी नहीं बन सकता है। तो यहां तक बात हुई चर्चा। तो कहते हैं आगे, तो जिसका परोक्ष ज्ञान होने मात्र से सांसारिक बल को प्राप्त नहीं करता है, अपितु परमात्मा के बल को प्राप्त करता है, तो फिर ऐसा पदार्थ कौन है जिसका स्वरूप आनंद है? तो कहते हैं यही देखो, यही आनंद स्वरूप है, जो तृतीय मंत्र में कहते हैं, ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाश्च मैथुनात् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद् वैतत्। प्रथम अध्याय में यह जिज्ञासा थी नचिकेता को, नचिकेता से उपलक्षित कोई भी साधक हो, जिज्ञासा ही होती है, क्योंकि माया का खेल ऐसा है कि जो प्रत्यक्ष दिखता है ना, उसी को ही अज्ञानी प्रमाण मान लेता है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से कोई भी और प्रमाण नहीं है, ऐसा मान लेते हैं नास्तिक व्यक्ति। तो वाचस्पति मिश्रा जी कहते हैं, केवल तुम प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मानते हो, अनुमान आदि को प्रमाण नहीं मानते हो, शब्दों को प्रमाण नहीं मानते हो, तुम्हारा तो व्यवहार भी नहीं चलेगा। एक पशु भी अनुमान प्रमाण को मानता है कि नहीं मानता भी? पशु को चारा दिखा दीजिए, आपके पीछे पीछे आ जाएगा, और डंडा दिखाई तो अनुमान है कि नहीं? पहले मार खाया है, वो चार खाया है, चारा को खाया है, वो जो संस्कार पड़ा है ना, संस्कार वो संस्कार को लेकर के है ना, तो इष्ट साधनता प्रकार ज्ञान बोलते हैं नए लोग, ये वस्तु मेरे लिए इष्ट है और ये वस्तु मेरे लिए अनिष्ट है, ये जो ज्ञान हुआ है ना पहले से, इस ज्ञान के आधार पर पशु भी अनुमान कर लेता है। अनुमान प्रमाण में पशु कमजोर नहीं है, देखो ये मनुष्य से भी आगे है ना। और तार्किक लोग जो कहते हैं, देखो हमारी बुद्धि बहुत कुशल है, तुम्हारी बुद्धि क्या कुशल, पशु से भी तुम कमजोर हो, नहीं है क्या? देखो ये आजकल जो है वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये कोई जो कुत्ता होता है ना, कुत्ते को पहले से ज्ञान हो जाता है, भूखा मारने वाला है, तो अनुमान किया कि नहीं? देखो तो किस प्रमाण से जाना, अनुमान प्रमाण से जाना है ना। तो कहना क्या है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मानता है, इससे अतिरिक्त कोई भी प्रमाण नहीं है, तो व्यवहार भी नहीं कर सकते है ना। इसलिए अंतदगत्व शब्द प्रमाण को माना जाता है। तो एक बार जो है कहीं शास्त्रार्थ हुआ, बहुत पहले की बात है, कि जो रजनीश ओशो भी गए थे वहां पर, तो किसी प्रसंग को लेकर के रजनीश ने कहा, तो बड़े तार्किक थे भाई, तो उन्होंने कहा कि देखो ये मेरी अनुभूति है, मेरी अनुभूति है भाई। इसलिए जिस विषय में अनुभूति हो रही है उसी को ही प्रमाण मानना चाहिए। तो हमारे हरिद्वार के एक महात्मा जी थे, भारतीय विद्यालय के बड़े अच्छे महात्मा थे, वो भी गए थे। तो उन्होंने कहा भाई तुमको अनुभूति हो रही है, ये अनुभूति सही है, इसमें क्या प्रमाण है? तुम्हारी अनुभूति सही है कि नहीं है ये कैसे जानेंगे? भाई किसी को देखो, रस्सी में रस्सी भी दिखती है, तो रस्सी में सर्प भी दिखता है, किसी को माला भी दिखेगी, किसी को दंडा भी दिखाई देगा, तो सबकी अनुभूति है कि नहीं? केवल अनुभूति हो रही है इसलिए प्रमाण मानेंगे, ये तो मूर्खता है। हाँ, एक शब्द प्रमाण को, शास्त्र प्रमाण को आधार मान करके यदि आप अनुमान करते हैं, शास्त्र कह रहा है कि यह तो वाई माने भूता न जानते, तो इस शास्त्र के आधार पर आप अनुमान कर सकते हैं, जगत सकम कार्यत्वाद घटवत ये कह सकते हैं आप। और हमारी अनुभूति जिसमें हो रही है उसी को ही प्रमाण मानेंगे, और जिस विषय की अनुभूति नहीं हो रही है उसमें कोई प्रमाण नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। इसलिए हमारी सनातन परंपरा में, हमारी वैदिक परंपरा में यही प्रक्रिया होती है। पहले भी आप लोगों को बताया था कि शास्त्र का उपदेश, गुरु का उपदेश, तत् अनुसार अपनी अनुभूति, तीनों का यदि मिलान हो जावे, तीनों का विषय यदि एक हो जावे, तब उस ज्ञान को प्रामाणिक माना जाता है। इसलिए गीता में क्या है, इदम परंपरा प्राप्तम, कहा कि नहीं भाई, ये जो ज्ञान है परंपरा से प्राप्त होता है, जो परंपरा से प्राप्त नहीं है उसको ज्ञान वास्तविक नहीं कहा जाता है। इसलिए साधक का साधकत्व इसी में है। अभी आपको वर्तमान में अनुभव में आता हो या ना आता हो, जैसे पाप पुण्य को आपने नहीं देखा है कि नहीं? पाप पुण्य किसने देखा? नहीं देखा आपने, हाँ, शास्त्र कह रहा है। इसलिए आप जैसे मान लेते हैं कि पाप पुण्य है ना, अच्छा विचार करेंगे शास्त्र के आधार पर आपको निश्चय हो जाएगा पाप पुण्य जरूर है। भाई पाप पुण्य यदि नहीं होता है तो एक माता के गर्भ में एक बालक स्वस्थ निकलता है और एक बालक जन्म से रुग्णा हो जाता है, कैसे हो जाता है ना? एक कुत्ता जो है कोई सेठ के घर में बढ़िया बढ़िया खाता है पीता है, ऐसी कमरे में रहता है, उसके लिए सेपरेट नौकर रहता है, और एक कुत्ता गली में घूमता रहता है, पत्थर खाता है, मार खाता है, इसका क्या है तो मानेंगे आप? पाप पुण्य मानेंगे कि नहीं? तो आप विचार कर लो, जब जन्म होता है शिशु का तो शिशु स्तनपान करता है, करता है कि नहीं? तो उनको कैसे ज्ञान हुआ भाई? इदम स्तन्यपानम मत अविष्ट साधनम, ये ज्ञान कैसे हुआ? तो पहले भी दुग्धपान किया है कि नहीं? तो पहले जन्म में जो दुग्धपान किया है उसका संस्कार पड़ा है ना, संस्कार पड़ा है ना, वो जो संस्कार पड़ा है, संस्कार के उद्बोधक सामग्री है स्तन्यपान। स्तन्यपान जो उद्बोधक सामग्री है उसको लेकर के स्मरण हो जाता है पूर्व का, यदि स्तन्यपान करता है ये, है ना? तो इसीलिए भले ही आपको अभी निश्चय नहीं हो रहा हो शास्त्र के प्रतिपाद्य का विषय, फिर ही मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि परमात्मा है, पाप पुण्य जैसे है परमात्मा भी ऐसा है। इसलिए निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो रहा है तो अहम बोलने से शरीर अवच्छिन्न चेतन ही आ जा रहा है, तो इसका मतलब निर्विशेष है ही नहीं, तो आपने कैसे निश्चय किया? निर्विशेष ब्रह्म भी है, निर्गुण निराकार भी है, और निर्गुण साकार भी है, और सगुण साकार भी है, तीनों प्रमाण है ना। ये वेदांत की प्रक्रिया होती है। यदि आपको अभी अनुभव होता हो या ना होता हो तो परोक्षतया मान लेना चाहिए आत्मा इत्येव उपलब्धव्य, आत्मा अस्ति इत्येव उपलब्ध, आत्मा है परमात्मा, ऐसा मान लेना चाहिए, उसी को साक्षात्कार होता है। ये परंपरा है हमारी सनातन की। तो देखो यही जो ध्रीव अमृतत्व है ये परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए वेदांत सिद्धांत में तो परोक्ष रूप से ये पहले मान लेना चाहिए। तो जो ही सत है वही चित है और वही आनंद है। ये सच्चित आनंद ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण हो गया। और ये तो वायु मानी भूता ने जानते सब क्या हो गए, तटस्थ लक्षण हो गए, है ना। तो यहां पर स्वरूप लक्षण को बता रहे हैं। देखो तृतीय मंत्र में कहते हैं व्यक्ति को रूप दिखाई देता है, ये घड़ा जो है लाल है, ये घड़ा जो है काला है, है ना, कपड़ा लाल है काला है, तो किससे दिखाई दे रहा है, चक्षु से भाई, है ना। तो चक्षु तो करण है भाई, तो किसके लिए करण है, किस व्यक्ति के लिए, आत्मा के लिए करण है। जो देखने वाला जो जीवात्मा हो गया है ना, वो रूप दर्शन का कर्ता हो गया, देखने वाला, तो देखने वाला हो गया आत्मा, और दिखाई दे रहा दिखने देखने का साधन हो गया चक्षु, और जो दिखाई दे रहा है रूप हो गया दृश्य, है ना। तो जिस व्यक्ति को रूप दिखाई दिया उसी को रस का भी ज्ञान होता है, उसी को गंध का भी होता है, जितने भी दृश्य है। तो यहां पर विचार ये करना चाहिए, तो जो जानने वाला है ना, वो विशिष्ट है कि जो है सामान्य है, ये विचार करना चाहिए, है ना। जिसको रूप का ज्ञान हो रहा है वो निर्विशेष है कि सविशेष है, यदि सविशेष मानेंगे तो वेदांत का प्रतिपाद्य सविशेष हो गया, निर्विशेष तो हुआ नहीं है कि नहीं। तो सविशेष के ज्ञान से तो अज्ञान की निवृत्ति होने वाली नहीं है। तो सविशेष का ज्ञान, मैं देवदत्त हूं, मैं मनुष्य हूं, ये ब्राह्मण हूं, ये जो विशिष्ट चेतन का ज्ञान तो अनादिकाल से हो रहा है, तो उससे तो कुछ होने वाला है ही नहीं। देखो तो श्रुति का ये तात्पर्य है। तो विचार करना चाहिए सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी पीछे का ना। तो बहिर्मुखी जब हो जाता है तो जैसे रूप दृश्य हो गया उसी प्रकार चक्षु भी दृश्य हो जाएगा, पकड़ में है ना। जिस समय आप रूप को देख रहे हैं उस समय चक्षु का भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं, हो रहा नहीं भैया। तो रूप जैसे दृश्य है तो उत्तम अधिकारी के लिए चक्षु भी दृश्य हो जाएगा, हो गया कि नहीं। हाँ, अहम घटम जानामि, है ना। तो जो जाना जा रहा है भाई वो कौन कौन हो गए, देखो घट भी जाना जा रहा है, जाना जा रहा है कि नहीं। तो जो जाना जाता है उसको कहते हैं दृश्य, दृग विषयत्म दृश्यत्म, दृग का जो विषय होता है, साक्षी का जो विषय होता है उसको कहते हैं दृश्य, जड़ कह लो दृश्य कह लो, परिच्छिन्न एक ही बात है ना। तो घट पट आदि और उसका जो रूप वो जैसे दृश्य जाना जाता है उसी प्रकार करण जो चक्षु है ना वो भी जाना जाता है, किससे दिख रहा है, चक्षु से। और किसके चक्षु, मेरी चक्षु, है ना। तो जिस चेतन से घट भाषित हो रहा है उसी चेतन से चक्षु भाषित है, देखो है ना। तो रूप भी भाषित हो गया और आपका जो है चक्षु करण वो भी भाषित हो गया, हो गया ना। अच्छा, तो रूप का ज्ञान किसको हुआ भाई, रूप का जो ज्ञान हुआ है ना, रूप ज्ञानवान अहम, घट ज्ञानवान अहम, हो गया ना। देखो रूप का जो ज्ञान भी वो भी भाषित हो गया, मुझे रूप का ज्ञान हुआ, हो गया कि नहीं? तो किसका ज्ञान हुआ? अब रूप के ज्ञान को भी जान रहे हैं, पकड़ माया? ये देखो और सूक्ष्म सूक्ष्म दृष्टि चलेगी, है ना? जैसे रूप भास रहा है उसी पे रूप का ज्ञान भी भास रहा है, हो गया कि नहीं? तो रूप में जैसे आपको संशय नहीं हो रहा है जिस समय ज्ञान हो रहा है, रूप का ज्ञान भी उसमें भी संशय नहीं होता है। आप रूप को देख रहे हैं, संशय है क्या? रूप है कि नहीं? संशय नहीं है, हो गया ना? तो रूप में जैसे संशय नहीं हो रहा है रूप के विषय में, रूप के ज्ञान के विषय में आपको भी संशय कहां हो रहा है? रूप का ज्ञान हुआ, और रूप का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ थोड़ा सोचते हैं तो बताएंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना, हो गया ना? तो जैसे सुख हुआ आपको, है ना, तो संशय होते है क्या उस समय? आपको सुख हुआ कि नहीं हुआ थोड़ा सोच लेते हैं। रसगुल्ला खाया, आपको सुख की जो अनुभूति हुई, संशय नहीं होता तुरंत, है ना? तो रसगुल्ले के रस में जैसे संशय नहीं होता है, रसगुल्ले रस का ज्ञान में भी आपको संशय नहीं होता है, हो गया कि नहीं? तीन बातें हो गई, रूप और रूप का जो कारण है चक्षु वो भी दृश्य हो गया, और रूप का जो ज्ञान है ना वो भी दृश्य हो गया कि नहीं हो गया, पकड़ माया, है ना? तो घट ज्ञान मुझे हुआ, रूप का ज्ञान मुझे हुआ, तो रूप भी दृश्य हो गया और रूप का ज्ञान भी दृश्य हो गया, हो गया कि नहीं, है ना? और देखो अहम घटम जानामि, अहम रक्त घटम जानामि, रक्त रूप हो गया, रूप भी दृश्य हो गया, घट भी दृश्य हो गया, और चक्षुषा घटम अहम जानामि, तो चक्षु भी दृश्य हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं? और किसना जाना भाई? प्रमाता ना जाना, प्रमाता प्रमाता, अगर अहम कह रहे कि नहीं, है ना? तो अहम अर्थ जो प्रमाता है विशिष्ट चेतन, वो भी भाषित होता है,